कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य शूदर्शत श्री श्रीमद डिवाइन प्रेज ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। द्वारका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। मायापुर धाम की जय। पंढरपुर धाम की जय। गंगमयी जमुनामयी की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हरि नाम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री गौरनिधाय की जय। तालकुंज विहारी की जय। गौर प्रेम नंदे ऑल ग्लोरी टू द असेंबल्ड डिवोटीज। ऑल ग्लोरी टू द असेंबल्ड डिवोटीज। ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु श्री गौरांग। ग्लोरी टू श्री प्रभुपाद। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्ण हरे
हरे कृष्ण
इसका थोड़ा दिस कमिंग इन इट्स ब्लॉकिंग द फेस ऐसा कुछ कर सकते हैं तो ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है। श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हम सभी मिलके श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। हम उनको देख नहीं पाते ऐसा है, विग्रह के रूप में तो है, क्यों नहीं देख पाते। हम लोग देखते हैं, आपने देखा है, किसी ने देखा है। चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे थे, मुझे दिखा सकते हो? मैं भगवान को देखना चाहता, दिखाओ मुझे। जगन्नाथपुरी में कई लोगों को रोक रोक के, रुको रुको रुको, तुमने देखा है, मुझे दिखा सकते हो? दिखाओ मुझे भगवान। तो एक चालाक व्यक्ति, बुद्धिमान भी, चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ मंदिर में ले गया और कहा, अब देखना चाहते हो भगवान को, देखिए तो सही। कौन है? भगवान है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का दर्शन करा के भगवान, भगवान का रूप भी भगवान है, भगवान का नाम भी भगवान है, भगवान की लीला भी भगवान है। भगवान की कथा ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम भगवत स्वरूप है। ऐसे भगवत स्वरूप भागवतम की हम लोग आराधना कर रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, क्या प्रातः ही नहीं, सदैव स्मरणीय प्रभु का, प्रभु की आराधना हम नित्यम भागवत सेवया करके यहां कर रहे हैं। क्या हुआ? वैसे मैं कहने जा रहा था कि जैसे प्रभु का बारंबार, प्रभु को बारंबार प्रणाम, उसी प्रकार आपका बारंबार यहां पर स्वागत है, पुनः पुनः स्वागत है। प्रभु के दरबार में, राधा कुंज बिहारी के चरणों में श्रीमद् भागवत कथा के शरण में, छत्र छाया में आपका स्वागत। कल के सत्र में हम लोग ये श्रीमद् भागवतम का छठवां स्कंध के पहले तीन अध्याय हम लोग इन सात सत्रों में, प्रातःकालीन सत्रों में संपन्न करेंगे, अध्ययन करेंगे इनका। तो कल हम लोग प्रथम अध्याय से प्रारंभ किए। इसके पहले नरक का भी एक रिकॉर्डिंग आपने सुना था, उसको सुन के कई सारे लोग इकट्ठे हो गए। ऐसा तो अनुभव नहीं, इस संसार का, इस पृथ्वी पर का वो अनुभव नहीं था। तो हुआ, लेकिन उस जगत का, उस नरक लोक में जो यातनाएं होती है, यम यातनाओं का वर्णन तो राजा परीक्षित सुन चुके थे। इसीलिए भक्त का हृदय है बहुत दुखी हुए, पर दुख दुखी। उनका तो कोई संबंध नहीं था, नरक होगा तो होगा सही, उनसे क्या। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी, उनको तो भगवान के धाम सीधे जाना ही था। तो भी वे चिंतित थे, दुखी थे, इसीलिए तो उन्होंने जिज्ञासा की, निवेदन किया फिर सुखदेव गोस्वामी जी के चरणों में, ऐसा कुछ उपाय बताइए ताकि इस नरक की जो गति है इसे मनुष्य बच सकते हैं। ऐसे जिज्ञासा करते ही जवाब में सुखदेव गोस्वामी, आप प्रायश्चित करो, प्रायश्चित करना चाहिए। तो राजा परीक्षित कहा, ना ना ना, कुंजर शौचवत, ये प्रायश्चित तो हाथी स्नान जैसा ही है। गुड बॉय, अच्छा विद्यार्थी हो तुम, पास हो गए। और हम लोग क्या किए थे कल, फेल हो गए। एक आत्मनिवेदन, थोड़ा ग्रेस पास, थोड़ा 35%। तो हुआ फिर सुखदेव गोस्वामी तप आदि की बातें की उन्होंने, लेकिन ये भी वैसा ही जैसे बांस को, उसके पेड़ को जलाते हैं या उसको काटते ट्रिमिंग करते हैं, लेकिन उसकी जड़ तो बनी रहती है, पुनः उगाता है जब वर्षा होगी, सिंचाई होगी। तो पाप की वासना तो बनी रहती ही है, प्रायश्चित के उपरांत भी। ऐसे स्वयं ही सुखदेव गोस्वामी कहे, और कई उदाहरण दिए उन्होंने। और अंत में उपाय उन्होंने ये कहा कि केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण, वासुदेव की भक्ति यही उपाय है। वो सिद्धांत को और भी आगे बढ़ाते, स्पष्ट करते हुए उन्होंने कृष्ण अर्पित प्राण की बात की। व्यक्ति को कृष्ण के चरणों में समर्पित होना चाहिए, और तत्पुरुष निषेवया, तत्पुरुष उनके पुरुष, भगवान के पुरुष, साधु पुरुष, संत महात्मा की सेवा करनी चाहिए। ये भी सिद्धांत, ये भी उपाय सुखदेव गोस्वामी सुनाए। वैसे उसके आगे तो कुछ कहने का बचता ही नहीं है। मामेकम शरणम व्रज, फिनिश्ड, और कुछ नहीं। फिर अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, आप केवल शरण तो लेके देखो, आप अपना फर्ज निभाओ, आप शरण में आ जाओ, फिर बॉल इज इन माई कोर्ट, फिर मेरा फर्ज शुरू होता है। मैं क्या करूंगा, आप शरण में आओगे तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं मोक्ष दूंगा आप सभी को। हम बहुत सारे, यहां कोई चिंता नहीं है, और बहुत सारे पाप, कोई समस्या नहीं है, सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि, अहम मोक्षिष्यामि त्वाम। और अंत में प्रभु ने कहा है मा शुचः, डरो नहीं या कोई संदेह नहीं रखो, शरण में आ जाओ बस। तो शरण में आना और प्रभु के भक्तों की सेवा, ये विधान, ये सिद्धांत सुखदेव गोस्वामी कहे। और उसके उपरांत और एक बात कहे हैं, सकृन मनहा कृष्ण पदारविंदयो। और फिर ऐसा व्यक्ति एक बार सही कृष्ण पदारविंदयो, कृष्ण के पदारविंद चरणारविंद का स्मरण करता है, उसमें प्रवेश करता है। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पांजरांतम, एक भक्त ने प्रार्थना की है, ये प्रभु क्या करो, कृष्ण त्वदीय आपके ही तो, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पांजरांतम अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः निवेशितम। वही बात सुखदेव गोस्वामी निवेशितम कहे हैं, प्रवेश तुम मेरे मानस राजहंसः, मेरा मन जिसको वह हंस कह रहे हैं, हंसः राजहंसः, उसको प्रवेश करने दीजिए ना हे प्रभु। किसमें प्रवेश? आपके चरण कमल, आपके चरण कमल जैसे हैं और मेरा मन हंस जैसा है, ये जोड़ी अच्छी है ना। जहां कमल खिलते हैं वहां कौन होते हैं? हंस का विहार होता है। तो ये राजा कुलशेखर की प्रार्थना है, वो कहते हैं कि हे कृष्ण आपके चरण कमल अद्यैव मे विशतु, उनमें प्रवेश होने दो मानस राज, मेरे मन का प्रवेश अद्यैव मे, अद्यैव आज ही अभी अभी। प्राण प्रयान समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। अरे ये वैसे यही बातें आगे भी कही जाएगी जो आज का विषय हम आगे बढ़ाएंगे इस कथा को। अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसा, और प्राण प्रयाण समय, जब प्राण का प्रयाण प्रस्थान का समय आएगा, प्राण प्रयाण समय कफ वात पित्तई, कफ कफ की मात्रा बढ़ेगी, कंठी घुर घुरायते, भागवत मिले कंठ से आवाज आए कैसा घुर घुर, कंठी घुर घुर घुरायते। ऐसे स्थिति में आपका स्मरण कैसे संभव होगा प्रभु? प्राण प्रयाण समयी कफवात पित्तई कंठावरोधन, अवरोधन बंधी होगा, स्मरणम कुतस्ते, स्मरण कहां से होगा। इसीलिए प्रभु अभी अभी आज ही अभी मेरे मन को आपके चरण कमलों में प्रवेश होने दो मेरे मन का। तो इस विचार का कोई व्यक्ति एक समय भी इस प्रकार का विचार करता है, सुखदेव गोस्वामी के सकृन एक एक बार, केवल एक बार भी ऐसा विचार मन में आता है, भगवान के चरणों का मन में स्मरण करते हुए, तो हो गया, बस हो गई छुट्टी। स्वप्नेपि, स्वप्न में भी वो तद भटान, वो यमदूत जो है, जो सब समय अपने हाथ में पाश रस्सी डोरी लेके चलते ही रहते हैं, उनका स्वप्न में भी दर्शन नहीं होगा। उस व्यक्ति को जिसने सकृन मनहा कृष्ण पदारविंद यो, ये जब बात कही सुखदेव गोस्वामी ने, तो तुरंत उनको, क्योंकि वे दृष्टांत कुशल है, दृष्टांत देने में कुशल है, केवल सिद्धांत ही नहीं कहते, फिर दृष्टांत भी देते, उदाहरण भी देते हैं। तो उनको एक इतिहास का स्मरण हुआ जो उन्होंने सुना था, अगस्त मुनि से सुना था, मलय पर्वत में जब अगस्त ऋषि स्वयं अपने विग्रह की आराधना अर्चना में व्यस्त थे, तो भगवान की आराधना करते करते, भगवान के मतलब भगवान के चरणों को छू ही रहे थे, छूना पड़ता है, अभिषेक हो रहा है, श्रृंगार हो रहा है, तो भगवान का श्रृंगार भी सेवा भी कर रहे थे और इतिहास भी सुना रहे थे। श्रोता कौन थे? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी तो अंत में, इस प्रसंग के अंत में ये बात स्वयं सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कहते हैं, ऐसी बातें जो मैंने अगस्त ऋषि से सुनी थी उसको मैं अभी तुमको सुनाऊंगा। अत्र इस संबंध में चोदाहरंतिम इतिहासम पुरातनम दूतानां विष्णु यमयोः संवादस्तम निबोधमे। इस संबंध में मुझे एक उदाहरण स्मरण हो रहा है, इतिहास है, मतलब बहुत प्राचीन, बहुत पुरानी बात है, जिस इतिहास में सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, दूतानां, दो प्रकार के दूतों का संवाद, विष्णु यमयोः, विष्णु दूत और यमदूत संवाद, उनका संवाद, तम निबोध में, उस संवाद को मुझसे ध्यान से सुनाओ। हां, ध्यान से सुनाओ, ये नहीं कि राजा परीक्षित नहीं सुन रहे थे, राजा परीक्षित को कभी झपकी नहीं लगती। पूरा ध्यान है तो भी कोई महत्वपूर्ण बात है तो सुखदेव गोस्वामी समय समय सुनाओ 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 और ध्यान से सुनाओ, सुन रहे हो ना, श्रद्धा से सुनाओ। ऐसे कह के राजा परीक्षित के ध्यान को और आकर्षित, मन को और एकाग्रित करा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। संवादस्तम निबोधमयी, आगे जब हम पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये तो विवाद है, ये वाद विवाद है यमदूत और विष्णुदूतों के बीच में, इसको ये सुखदेव गोस्वामी संवाद ही कह रहे हैं। नहीं, ये संवाद सम्यक प्रकार से जो संभाषण हुआ, कुछ दोनों पक्ष ने एक दूसरों से कुछ जिज्ञासाएं की और बड़े शांतिपूर्वक उसके जवाब भी दिए हैं। जब एक व्यक्ति बोल रहा है तो दूसरा बीच में नहीं बोल रहा, उनका सब जो कहना है वो कहने के बाद, सुनने के बाद पुनः दूसरा व्यक्ति कुछ जिज्ञासा करता है, फिर उसका जवाब होने के बाद फिर पुनः प्रश्न पूछे जाते हैं। ये संवाद हुआ, वाद विवाद में ऐसा नहीं होता, बीच में उसका आधा वाक्य हुआ ही नहीं तो बीच में और कुछ कर, हम लोग विवाद करते रहते हैं, लेकिन ये संवाद है। कान्यकुब्जै द्विजः कश्चित् दासीपतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दाश्चः संसर्गदूषितः। सुखदेव गोस्वामी कान्यकुब्जै, कान्यकुब्ज नाम का एक स्थान उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास, आज भी कन्नौज, कन्नौज नाम का शहर है। यही कन्नौज प्राचीन काल में कान्यकुब्ज कहलाता था। कान्यकुब्जी द्विजहा, और वहां के ब्राह्मण बड़े प्रसिद्ध हुआ करते थे, कन्नौज के ब्राह्मण कन्नौजिया ऐसा भी कुछ कहते थे। ये सारस्वत ब्राह्मण है कश्मीर के, दाक्षिणात्य है दक्षिण भारत के, इस प्रकार अलग अलग स्थान के ब्राह्मणों का अलग अलग नाम भी, उनकी ख्याति अलग अलग क्षेत्रों में। तो कन्नौज के ब्राह्मण प्रसिद्ध थे। तो कान्यकुब्जे द्विजहा, एक ब्राह्मण की ये बात है, लेकिन देखिए और आगे क्या परिचय है इस द्विजहा। द्विज जो दो बार जन्म लेता है, मां जन्म देती है और फिर गुरुजन पुनः कुछ मंत्रों से उनको पुनः जन्म देते हैं। संस्कारात् भवेत् द्विजः, संस्कारों से व्यक्ति द्विज बनता है, नहीं तो जन्मना जायते शूद्रः। जन्म से तो व्यक्ति शूद्र होता है या पशुवत ही होता है। जो संस्कार होते हैं, संस्कारों से संस्कारात् भवे द्विजः, ट्वाइस बोर्न, दूसरा जन्म लेता है व्यक्ति। तो ये द्विज कश्चित् दासीपति रजा मिलः, एक कोई ब्राह्मण था द्विजः, लेकिन समस्या क्या, दासीपति रजामिल, उसका नाम अजामिल, कैसा अजामिल, कैसा द्विज, कैसा ब्राह्मण, दासीपति, दासी का पति बन गया। कैसी दासी, साधारण उसे वेशापति ही कहना चाहिए था, लेकिन तो वो दासी, वो वेशा थी, वेशा का पति बन गया। कैसे बना उसका इतिहास बाद में, और चरित्र आगे का और आगे आएगा। यहां इतना ही समझना कि वेशापति, श्रील प्रभुपाद इसका अनुवाद कर, निम्न श्रेणी की स्त्री, दोनों भी कहें, दासी मतलब वेशा, वेशा का पति या निम्न श्रेणी के स्त्री का पति वो बन गया। अजामिलः नामना नष्ट सदाचारो, तो अजामिल उसका नाम, और स्वाभाविक ही, और क्या हम लोग अपेक्षा कर सकते हैं, जब दासी का पति बन गया तो नष्ट सदाचारो, सारे उसके सदाचार नष्ट हो गए। कोई वेशा का संसर्ग दूषितः, दास्यः संसर्ग दूषितः, दासी के संसर्ग से, और केवल साधारण संपर्क नहीं, सम्यक प्रकारेण संपर्क, केवल देखा देखी ही नहीं, कोई बोल चाल ही नहीं, और भी आगे की सभी बातें। इसीलिए अंग संग, तो उसको संसर्ग दूषित, संसर्ग से दूषित हुआ, किसके, दास्या, दासी के, इसी दासी के, दासी पति रजा मिला, दासी का जो पति बना था उसी के संपर्क में आने से, संग से, सब बातचीत से, सब खान पान से, वेशभूषा से दूषित हुई आयु की 25 वर्ष तक, 25 से 50 गृहस्थ आश्रम और 50 से 75 वानप्रस्थ, और आगे कहीं बचता है राम है नहीं होता है तो संन्यास वगैरह। तो इसने कोई वानप्रस्थ आश्रम वगैरह स्वीकार, जब वानप्रस्थ का समय था तो अभी अभी शादी किया, जिस समय वानप्रस्थ लेना चाहिए था उस वक्त शुभ मंगल सावधान हो गया, सावधान तो हुआ ही नहीं, केवल हम मंगल की कामना करते हैं, मांगल्य अमंगल, लेकिन सावधान जो कहा जाता है, सावधान, इस पर ध्यान ही नहीं जाता। एक व्यक्ति का ध्यान गया, वे थे रामदास स्वामी, ऐसे सावध हो गए भागे दौड़े, सावधान, जो बंधन में फंस रहे सावधान, उसने गार्ड छोड़ दी बीच में ही, मंत्र बोले जा रहे सावधान सावधान, तो सावध होके अब और एक एक ही मंत्र बचा था तो उन्होंने छोड़ दी गांट और दौड़ पड़े, सभी 12 सभी लोग पीछे दौड़ रहे थे, किसी के हाथ नहीं लगे, आगे चल के बहुत बड़े स्वामी हो गए। तो इसने कहा ये तो हुआ वानप्रस्थ भी नहीं, कुछ नहीं चल रहा है इसका। अभी कुछ समय पहले हमारे एक भक्त के पिताजी का विवाह हुआ, अमेरिका के हमारे भक्त, तो हमने पूछा हाउ ओल्ड इज योर फादर, क्या उम्र था, 75 ईयर्स, 75 साल की उम्र है, और उस पिताजी ने मैरिज का इनविटेशन कार्ड अपने पुत्र को भेजा, मेरा विवाह हो रहा है बेटा आओ, बेटा है ब्रह्मचारी अमेरिकन बेटा भी ब्रह्मचारी है, उसको पिताजी ने जिसकी 75 साल की उम्र में अभी विवाह हो रहा है, कुछ पांचवा या छठा विवाह था उसका, फिफ्थ सिक्स्थ मैरिज ऐसा कुछ, अब ये तो कुछ भी नहीं है, दर्जन तक पहुंच जाते हैं या 10-20, तो 2-4 तो ऐसे कॉमन है, हम तो हंस रहे हैं, लेकिन अगर हम नकल हमारी जारी रहेगी विदेश की, तो आने वाले 10-20-50-100 वर्षों में हमारी स्थिति वही होगी जो आज विदेश में है, आपको पता नहीं है, कोई बताता ही नहीं है पता, क्यों वहां की चमक दमक ही हम देखते हैं बस, लेकिन ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती, कौन बता, प्रभुपाद ही एक ऐसे भारत के रत्न हुए, इस भूमि के सुपुत्र हुए जिन्होंने सावधान किया, भारतवासियों सावधान, भारतीय बनो, केवल पासपोर्ट है इंडियन पासपोर्ट है, इसीलिए हम लोग भारतीय है, ऐसा क्लेम हम नहीं कर सकते, भारतीयता भा में जो रथ है, भा मतलब ज्योति प्रकाश ज्ञान में जो रथ है, तल्लीन है, वे है भारतीय। वो ज्योति कहां से ज्योति प्राप्त करेंगे? कलौ नष्ट दृशाम ईशाम, कलयुग ने तो हमारी दृष्टि को नष्ट कर दिया, इसीलिए भगवान ने क्या व्यवस्था की है? पुराण अर्क उदित, भगवान ने एक प्रकाश सूर्य को उदित किया, पुराण अर्क उदित, और वो पुराण श्रीमद् भागवत पुराण है। श्रीमद् भागवत पुराण को भगवान ने हम मनुष्यों को दिया है एक सूर्य के तरह। जब सूर्य उगता है तब दिखाई देता है, तो भागवत का जो प्रकाश है, गीता भागवत के प्रकाश में हम लोग बच सकते हैं। जब अंधेरा तो पता ही नहीं चलता कहाँ गड्ढा है, कहाँ क्या है, कहाँ रास्ता है, कहाँ खाई है, कहाँ ब्रिज है, कहाँ नदी है, कहाँ सांप है, कहाँ कांटे हैं, अंधेरे में कुछ पता नहीं चलता है। तब टॉर्च लाइट ऑफ नॉलेज, इसी को सुखदेव गोस्वामी कहे थे, विपश्चितम विमर्शनम प्रायश्चितम। ये ज्ञान गीता भागवत का जो ज्ञान है ये प्रायश्चित, फिर रक्षा होगी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद को हम सदैव ऋणी रहेंगे। जिनकी कृपा से अब विदेश में लोग गृहस्थ आश्रम को स्वीकार कर रहे हैं। कई ब्रह्मचारी सन्यासी तो है ही, लेकिन गृहस्थ आश्रम, न तो हम कहते हैं, न तो शास्त्र कहता है, न तो भगवान कहते कि सभी सन्यासी बनो, नहीं, गृहस्थ बनो, लेकिन गृहस्थ आश्रम, अपने घर का आश्रम बना दो। ये बातें सीखनी है। जब अजामिल ने ये किया वो किया, सब उसकी जो लीला, उसका जो, इसे सीखना क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये तो अजामिल मतलब माया से मिला हुआ, अजामिल मतलब कौन व्यक्ति? वो जो माया से मिला हुआ है, उसके चरित्र को हम यहां देख रहे हैं, जो सही नहीं है, ये आदर्श नहीं है, ये निंदनीय है, प्रशंसनीय नहीं है। वाह, गृह था को हमारे भक्ति विनोद ठाकुर, हाँ ठीक है, गृहस्थ हो ठीक है, स्वागत है, लेकिन करो क्या? गृह था को वन्ने था को सदा हरि बोले राखो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने घर का आश्रम बनाओ, गृहस्थ आश्रम। हम लोगों का ब्रह्मचारी आश्रम सन्यास आश्रम है, आप भी अपना आश्रम बनाओ, घर का आश्रम, गृहस्थ आश्रम। जिस घर में तुलसी हो, तुलसी के पौधे, भगवान का मंदिर, जिस भगवान को भोग लगता है, जिस घर में कई सारे चित्र हैं भगवान के दीवार पर, कई सारे ढेर के ढेर ग्रंथ है, गीता भागवत है, प्रातःकाल उठ के नमस्कार करते हैं भगवान को भोग लगाते हैं, परिवार के सदस्यों को प्रसाद खिलाते हैं। जब भी फोन आता है, हाय हाय नहीं कहते, क्या कहते हैं? हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कुछ लोग बड़े हर्ष के साथ हरी वो हरी वो, दूसरा व्यक्ति क्या कहता है? हरे कृष्ण। एक व्यक्ति कहता है हरी बोल, दूसरा व्यक्ति क्या कहता है? हरे कृष्ण हरी बोल। हरि बोल हरि बोल। वाह, तो फोन तो आते ही रहेंगे, तो हेलो हेलो के बजाय आप क्या कह सकते हैं? हरि बोल। फिनिश्ड, नो टाइम, लुक देना, समय नहीं है उसमें, क्या अधिक कुछ अलग से समय लगता है क्या? हेलो की जगह हरे कृष्ण कहो। कुछ लोग ऐसे हरि ओम भी कहते हैं, हरि ओम सही, राम राम कहते हैं। खाना ही है, प्रसाद खिलाओ, राधे राधे कहो, सही, ब्रज के भाव में, ये हमारी संस्कृति है। तो हर रोज की जीवन में हम इसको उतार सकते हैं, इसके लिए अलग से समय की जरूरत नहीं। और इस वक्त ये हम काम कर रहे हैं, काम में है, और ये धर्म है। योग कर्म सुकौशलम, ये योग जो है, भक्ति योग है, ये आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला हमें धर्म सिखाता है। जीने की कला, जीने की राह अगर सीखना है तो गीता भागवत का अध्ययन, साधु संग, हरे कृष्ण भक्त आपको सिखाएंगे, समझाएंगे कैसे आप अपने जीवन को कृष्ण भावना भावित बना सकते हो, घर को कैसे आश्रम बना सकते हो, गृहस्थ आश्रम, घर का क्या बना सकते हो, मंदिर बना सकते हो। लेकिन आजकल हम लोग घर को क्या बनाने में लगे हैं, होम थिएटर लेटेस्ट आ गया, होम थिएटर। पहले तो थिएटर और अलग से होता था, थिएटर मतलब थिएटर, सभ्य लोग थिएटर में नहीं जाते हैं, थिएटर मतलब कुछ ऐसे ही, कुछ निम्न श्रेणी के लोगों के लिए थिएटर, सिनेमा घर। लेकिन आज हम लोग अपने घर को ही, हर घर सिनेमा घर बन रहा है, हर घर सिनेमा घर बन रहा है। तो हमारे समक्ष ये चुनौती है, चैलेंज है, ये जो भव प्रवाह है, सब बह के जा रहे हैं हम लोग, बह रहे नदी, तो उसके साथ हम लोग बह के जा रहे हैं। उसके विपरीत कार्य करने की, या अगेंस्ट द करंट, प्रवाह के विपरीत तैरने की क्षमता तब आएगी जब हम भागवत का श्रवण करेंगे। प्रवाहो परमम, प्रवाह उपरमम, प्रवाह के विपरीत कार्य मतलब आध्यात्मिक कार्य तब होगा जब श्रणवन्ति गायन्ति गृणन्ति अभीक्ष्णशः। ये श्रीमद् भागवत की कथा, भगवत गीता का अध्ययन हम लोग श्रणवन्ति सुनेंगे, गायन्ति गृणन्ति औरों को सुनाएंगे, स्मरन्ति नन्दन्ति स्मरण करेंगे और उनके पास पहुंचाएंगे। ऐसे व्यक्ति क्षमता रखेंगे, जो भी संसार में इस वक्त हो रहा है, जिस प्रकार का माहौल है, जो हमें नरक की ओर ही ले जा रहा है, राजसिक और तामसिक कार्य हमसे हो रहे हैं, अधो गच्छन्ति, तामसिक कार्य मतलब अधा गच्छन, नीचे जा रहे, अधो गच्छन्ति तामसा, जघन्य गुणवृत्ति स्था अधो गच्छन्ति तामसा, जघन्य ऐसे निंदनीय कार्य, गर्हित कर्म करने वाले तामसिक लोग कहां जाते, अधो गच्छन्ति। जब हमने कल वर्णन सुना, कहां है ये नरक, नर ब्रह्मांड के बाहर है या पृथ्वी पर है कि और कहां है, तो सुखदेव गोस्वामी, नहीं नहीं, दक्षिण में, पृथ्वी के दक्षिण दिशा में, अधः नीचे, संकेत किया कहां पर है, तो अधा गच्छन्ति वहां जाएंगे जघन्य गुण वृत्ति स्था। और जो सत्व गुण वाले हैं, सात्विक लोग हैं, सदाचारी जो है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति। भगवान ने स्पष्ट किया ये हमारे मन की बातें नहीं है, यहां कोई मनोधर्म यहां चलता भी नहीं, प्रभुपाद कहने भी नहीं देते हम लोगों को, इस प्रकार का ट्रेनिंग है इस कान में। मुझे लगता है कि बात यहां नहीं चलती है, मेरा ख्याल आप गटर में फेंक सकते हैं अपना ख्याल, ये अपने ख्याल अपने विचार नहीं होते यहां। साधु शास्त्र आचार्य ये प्रमाण है। तो नीचे जाते हैं तमोगुणी, जब हमने कहा तो इसका कोई शास्त्र कोई आधार है, जैसे यहां सुखदेव गोस्वामी ने भी कहा एक बार जो कोई स्मरण करता है भगवान के चरणों का, स्वप्ने भी तद भटान, स्वप्न में भी नहीं देखेगा यमदूतों को। फॉर एग्जाम्पल कोई पूछा इसका कोई उदाहरण है, आप ऐसे कह रहे तो यह सुखदेव गोस्वामी उदाहरण बता रहे, दृष्टांत दे रहे हैं। तो प्रभुपाद भी या आचार्य गण जो भी कहते हैं उसकी पुष्टि होती, कुछ आधार होता है शास्त्र, साधु शास्त्र आचार्यों का आधार। तो ऊर्ध्वम ऊपर जाते हैं, सत्वगुणी ऊपर जाते हैं, तमगुणी नीचे जाते हैं, लेकिन इन तीन गुणों के परे वाले जो लोग हैं उसके भी परे पहुंच जाते हैं। ऊपर जाना मतलब स्वर्ग में जाना, जो गुणातीत है सत्व गुण से भी ऊंचा गुण है, शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व वाले कहां जाएंगे, स्वर्ग से ऊपर क्या है, कौन सा स्थान है, गोलोक है, हरिधाम है, वैकुंठ धाम है, वहां जाएंगे। यान्ति मद्याजिनोऽपि माम, जो मेरी शरण में आता है, कृष्ण कहते हैं यमदूत आ गए, गार्ड ने तो कुत्ता भी तो है ही ना मेरा, कुत्ते से भी आगे बढ़े, दरवाजा तो बंद ही है, कोई चिंता नहीं। वो यमदूत ने कोई बेल वगैरह नहीं बजाया, फिर कोई चॉइस भी नहीं, देख लो पहले कौन है, यमदूत है ऐसा कोई चॉइस नहीं। यमदूत जब आते हैं तो आ ही जाते हैं, तो वे आ गए मृत्यु काल उपस्थिते। वे कैसे थे, सब पाश हस्तां, उनके हाथों में पाश थे, लंबी लंबी रस्सियां डोरी लिए आए थे, तीन थे पुरुषान अति दारुणान, अत्यंत ही भयावनी उनकी सूरत उनकी शक्ल थी, वक्रतुंडा ऊर्ध्वरोमणा आत्मानम नेतुम आगतान, उसको अजामिल की बारी आई थी, अब उसको ले जाने के लिए यमदूत आए। वक्रतुंडान, उनके मुख कैसे हैं, ऐसे वक्रतुंडान ऐसे, उसका कोई फोटो खींचेगा नहीं फिर, ऐसे टेढ़े मेढ़े उनके मुख, और जब मुख ही ऐसा है तो फिर पैर और क्या क्या सब कल्पना कर सकते हैं, सभी का पूरा वर्णन यहां नहीं है, लेकिन थोड़ी कल्पना करनी होगी हमको, उसका मुख ही ऐसा है तो फिर और क्या क्या कैसे कैसे। ऊर्ध्वरोमणा, और उनके बाल है, शरीर में सारे लंबे बाल है, लेकिन ऐसे नीचे लटक नहीं रहे, ऊर्ध्व। जब रोमांच हमारे शरीर में होता है, आपके शरीर में कभी हुआ रोमांचित जब होता है शरीर, जब हम शेर को देखते हैं, शेर को कैसे, बिल्ली को ही अगर देखते हैं कुछ लोग, चूहे को देखते हुए लोग इतने डरते हैं, उनका शरीर रोमांचित होता है। प्रभु भक्तों का तो प्रभु के स्मरण से शरीर रोमांचित होता है, प्रभु को देख के। हम लोगों का तो शेर बाघ बिल्ली को देख के हम कभी रोमांचित होते, तो इस प्रकार के रोमांचित उनके रोंगटे खड़े थे, से बाल खड़े ही थे पूरे शरीर में, और वे आ ही रहे थे। क्या किया उन्होंने, वो फास फेंक दिया, और क्या करें अभी खींच रहे हैं। कितने हैं, तीन हैं, रजामिल के पार्टी में एक ही अकेला ही है, और कोई पार्टी है तो देहापत्य कलत्रादिषु असत सैन्येषु। सुखदेव गोस्वामी कहे हैं, सुखदेव गोस्वामी ने जब भाषण अपना श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ ही की, अब कुछ ही वाक्य कुछ श्लोक कहे थे, तो वहां पर भी सुखदेव गोस्वामी कहे हैं, लोग हम संसार के लोग, हमारी आसक्ति हमारा विश्वास किन में है, देह में, हमारी स्वयं का देह शक्ति, देह फिर अपत्य, हमारे ऑफस्प्रिंग्स, हमारे बच्चे बाल बच्चे इत्यादि, कलत्र वाइफ पत्नी आदिशि, और इष्ट मित्र पड़ोसी डॉक्टर्स और कंसल्टेंट जिनके, लेकिन इन सब को सुखदेव गोस्वामी के असत सैन्येषु, ये जो सैन्य तुम लोगों ने खड़ा किया ना अपने इर्द गिर्द, ये सब असत, ये झूठ मूठ का है, ये तो बेकार का है। और तब जब यमदूत आएंगे, इसमें से कोई एक भी सहायता नहीं कर पाएगा, ऐसे स्पष्ट सुखदेव गोस्वामी लिखे हैं, कहे हैं, और ये हम लोगों का डेली का तो एक्सपीरियंस है ही। तो यहां पर अजामिल ऐसे ही अकेला था, और भी कोई होते तो क्या बिगाड़ते इन दूतों का, और वैसे वह अकेला नहीं था, उसका पुत्र सामने था, खेल रहा था। दूरे क्रीडक क्रीडनक आसक्तम पुत्रम नारायण अभयम। तो कुछ दूरी पर पुत्र खेल रहा था, नारायण खेल रहा था। प्लावितेन स्वरेन उच्चैर आजुहाव आकुलेन्द्रियः, बड़ा ही व्याकुल आकुल व्याकुल होके बड़े उच्च स्वर से अपने पुत्र की ओर देखते हुए उसने आजुहाव ये शब्द कहे। कौन से शब्द थे? नारायण नारायण नारायण। ये जब शब्द सुने जिस किसने सुने होंगे, औरों ने भी सुने होंगे, लेकिन वहां और एक पार्टी ने भी नारायण निशम्य म्रियमाणस्य मुखतो हरि कीर्तनम भर्तुर्नाम महाराज पार्षदा सहसापतन। यमदूत तो आ ही पहुंचे थे, और जब यमदूत के उस दर्शन देखने मात्र से, और वो पांच फेंके थे और खींच रहे थे, सूक्ष्म शरीर को अलग कर ही रहे थे, तब अजामिल ने जो नारायण नाम का उच्चारण किया तो सहसा तुरंत और चार व्यक्ति वहां पहुंच गए। उन व्यक्तियों ने सोचा, अरे 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 ये सुना तुमने, भरतुर नाम, हमारे भरता प्रभु का कोई नाम पुकार रहा है, सुना सुना? हा हा, व्हाई नॉट, आई सुना, सुन सुन रहा हूं, नारायण, यस, म्रियमाणस्य। तो व्यक्ति थे अजामिल मरणासन्न, अब कुछ ही क्षण बचे थे इस अजामिल के, उसके मुख से निकले हुए नारायण के नामों का उच्चारण जब विष्णु दूतों ने सुना तो झट से तैयार हुए और चारों की छोटी टीम बना के वहां आधम के आ पहुंचे। विकर्षतो अंतर्हृदयात् दासी पति रजामिलम् यम प्रेष्यान् विष्णु दूता वारयाम् सुरो ओजसा आशु वारयाम आशु ओजसा। तो जब वे पहुंचे तो वो देख ही रहे थे कि तीनों ये ऊर्ध्व रोमना वगैरह वाले ये यमदूत अजामिल को यह लिखे हैं अंतर हृदयात, हृदय के भीतर से अजामिल को बाहर खींच रहे थे। हमारी आत्मा चेतना के रूप में तो पूरे शरीर भर में बिखरी होती है, फैली होती है, लेकिन हमारा जो स्थान है, हमारी सीट जो है वो हृदय में बताई है, हृदय में। कठोपनिषद में कहा है, शरीर को तुलना दी है पेड़ की, और पेड़ पर दो पंछी बैठे हैं, एक आत्मा और दूसरे परमात्मा, और ये बैठे हैं हृदय में, बैठे रहते हैं, उनका स्थान हृदय में है, और उसी की किरणें, उसी का प्रभाव, चेतना पूरे शरीर भर में फैली रहती है। तो उस अंतर हृदयात विकर्षतो, छीन रहे, खींच रहे, दासीपति रजामिलम विष्णु दूता। तो विष्णु दूत जब पहुंचे तो उन्होंने स्टॉप, रुको, ऐसे ओजसा, क्या लिखा, ओजसा, गंभीर वाणी से वे कहे, या कोई प्रमाण, कोई अथॉरिटी के रूप में, हम यहां है, डोंट मूव, हिलना भी नहीं भी। उचुर निषेधितास्तांस्ते वैवसत पुरासरः के यूयम् प्रतिषेधारो धर्मराजस्य शासनम्। तो इन लोगों ने जब रोका यमदूतों को तो यमदूत को यहां कहा है, यमदूतों को वैवस्वत मतलब सूर्य पुत्र, यमराज सूर्य के पुत्र है और जमुना सूर्य की पुत्री है, यमराज और जमुना भाई और बहन है, और कभी आगे प्रसंग आता है तो सुना सकते हैं। ये याद रखिए, यम और यमी का मंदिर भी है विश्राम घाट मथुरा में, जमुना के तट पर, और भैया दूज के दिन कोई भाई बहन मिलके वहां स्नान करते हैं और यमराज और जमुना का दर्शन करते हैं तो हो गए, मुक्त हो गए, ऐसी व्यवस्था है। तो ये सूर्य पुत्र यमराज, उनके दूतों ने जब ये उच्च स्वर से कहे हुए ये वचन कहे, रुको 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 स्टॉप, वो निषेधात्मक, तो उन्होंने देखा, अरे तुम कौन हो, के यूयम, ऐसा ही प्रश्न पूछा, के यूयम, आप कौन हो। प्रतिषेधारो धर्मराज, आप जानते हो हम तो यमराज के दूत है, और तुम जो कौन हो जो धर्मराज की सत्ता को तुम विरोध कर रहे हो, ललकार रहे हो, चुनौती दे रहे हो, आपके पास कोई आईडी है, आइडेंटिटी कार्ड, हु आर यू, कौन हो तुम, समझते हो हम कौन, हम यमराज के दूत है। धर्मराजस्य शासनम, धर्मराज यमराज को, धर्मराज धर्म के वेत्ता यमराज, उनके शासन के विपरीत कार्य तुम करने के लिए यह पहुंचे हो और हमको रोक रहे हो। कश्य वा कुत आयातः, तुम किसके हो, कश्य तुम किसके हो, हमने तो कह ही दिया हम तो यमराज के दूत है, कश्य आप किसके हो, कुतः आयातः, और कहां से आए हो, कस्मादश्य निषेधता, और क्यों निषेध कर रहे, क्यों रोक रहे हो हमको, हम तो अपना फर्ज निभा रहे हैं, यमराज के आदेश का पालन कर रहे हैं। किम देवा उपदेवा या यूयम किम सिद्ध सत्तमाः, आप कोई देवता तो नहीं हो, उनको थोड़ा शक हो रहा, आप देवता तो नहीं हो, देवता नहीं तो शायद आप उपदेवता होंगे, या सिद्ध सत्तमः, या कोई सिद्ध पुरुष हो कौन आप। सर्वे पद्म पलाशाक्षा पीत कौशेय वाससः, हम देख रहे कि आपकी आंखें, आप सभी के सभी कमल लोचनी हो, और पीतांबर वस्त्र पहने हो आप सभी के सभी, किरीटः आपके सिर पर मुगुट है, कुंडल धारण किए हैं, लसत पुष्कर मालिनः, और आप माला पहने हो कमल के पुष्पों की, ताजे ताजे कमल के सुगंधित पुष्पों की माला भी आप पहने हो। सर्वे च नूतन वयसः, और आप सब की उम्र तो, आप तो जवान लगते हो, सभी के सभी आप तरुण हो। सर्वे चारु चतुर्भुजः, और आप चारों की चार चार भुजाएं भी है। धनुर निशिंग असि गदा शंख चक्र अम्बुजश्रियः, और अपने अपने हाथों में अलग अलग चिन्ह भी आप धारण किए हो, किसी के हाथ तलवार है, आप में से किसी ने गदा को धारण किया है, शंख को, पद्म को, ऐसे सुशोभित लग रहे हो, और आपके यहां पहुंचने से दिशो वितिमिर आलोकः कुर्वन्त स्वेन तेजसः, आपसे जो तेज, आपके शरीर इतने तेजस्वी है, हम जब यहां पहुंचे तो यहां वैसे घर के अंदर का भाग होने के कारण थोड़ा अंधेरा था ही, लेकिन हमने यहां आके तो यहां के अंधेरे को और भी गाढ़ा अंधेरा बना दिया, हमारे शरीर से तो काले ही किरण निकलते हैं, हम ऊर्ध्व रोमना और काले वर्ण हमारे हैं, तो यहां तो अधिक अंधेरा फैल चुका था, लेकिन आप जब आए तो वितिमिर, उस तिमिर को हटाए आप, उस अंधकार को अपने हटाए, स्वेन तेज, जैसा अपने तेज से, किमर्थम, तो सुंदर तो लग रहे हो भाइयों मित्रों, लेकिन ये समझ में हमको नहीं आ रहा है किमर्थम धर्म पालस्य किन्नरान न निषेधता। आप सभ्य पुरुष लग रहे हो, आपकी वेशभूषा आपका सौंदर्य तो अद्भुत है, लेकिन ये समझ में नहीं रहा हम धर्मपाल यमराज के जो किंकर दास है उनकी सेवा में यहां तल्लीन है ऑन ड्यूटी, आप हमें विरोध क्यों कर रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही। युत्युक्ते श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी अब यहां थोड़ा कमेंट करते हैं। इतना कहने पर यमदूतैः ते वासुदेवोक्तकारिणः तेन प्रत्युचुः प्रहस्येदं मेघ निर्हादया गिरा। तो यमदूतों के ये वचन जब वासुदेव उक्तकारिणः उनको कहा है, विष्णुदूत मतलब वासुदेव के कहे हुए जो वचन है उसके अनुसार कार्य करने वाले ये विष्णुदूत तान, क्योंकि प्रश्न पूछा के युक्त तुम कौन हो, किसके हो, कहां से आए हो, क्यों विरोध, इस प्रकार के कई प्रश्न पूछे थे। तो प्रत्युचुह उसका प्रत्युत्तर दे रहे हैं प्रहसन हंसते हुए, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई चारों के चेहरे पर हास्य है और उनकी वाणी, अब बोलेंगे तो उनकी वाणी कैसी है, मेघ निर्हादया मेघ गंभीरया वाचा, बड़े उच्च स्वर से, कितना उच्च स्वर, जैसे मेघ की गर्जना होती है वर्षा के दिनों में, मेघ की गर्जना दूर दूर तक पहुंचती है। जब यहां साउंड सिस्टम नहीं थी शुरुआत में तो हमारी आवाज हम पंडाल के आधे हिस्से तक भी आवाज नहीं पहुंच रही थी, और साउंड सिस्टम भी है तो कहां तक पहुंच रही है, रास्ते तक, रास्ते के लोगों को कुछ पता नहीं हम लोग क्या बोल रहे हैं। लेकिन ये जो विष्णु दूत थे उनकी आवाज मानो गर्जना, बादल जब गरजते हैं तो सारे पुणे के लोग सुनते हैं या यहां के गर्जना और पूरे पुणे जिले तक पहुंच जाती है, इस प्रकार की उच्च स्वर से उनकी वाणी थी, वचन थे। श्री विष्णु दूता वचुहु, अब विष्णु दूत योयम वै धर्मराजस्य, उच्च स्वर से कह रहे यदि निर्देशकारिणः ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वम् यच्चाधर्मस्य लक्षणम्। विष्णुदूतों ने कहा, उच्च स्वर से कहा, बड़े स्पष्ट कहा, अगर तुम कहते हो कि तुम यमराज के दूत यमराज के प्रतिनिधि हो, ब्रूत तो कहो, तभी हम स्वीकार करेंगे तुम सभी यमराज के प्रतिनिधित्व कर रहे हो यहां। यदि तुम समझाओगे, दो बातें हैं, धर्मश्च नस्तत्वम, तुम्हारे तो स्वामी धर्मराज है तो तुमको धर्म का तत्व पता है, धर्म के तत्व को समझाओ, और साथ ही साथ अधर्मश्च लक्षणम और अधर्म का लक्षण भी समझाओ। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, बोलो बोलो, केवल तुमने कहा कि हम यमदूत है, ऐसे कहने से हम स्वीकार नहीं करेंगे। बोलो, जानते हो? कहो। ब्रूत धर्मस्य तत्वम अधर्मस्य लक्षणम कथंस्विद् ध्रियते दण्डः किं वास्य स्थानमिप्सितं दण्ड्यः किं कारिणः सर्वे आहोस्वित् कतिचिन्नृणाम्। प्रभुपाद अनुवाद में लिखे हैं, अन्यों को दंड देने की विधि क्या है? आगे और भी कुछ प्रश्न है, ये दो तो प्रश्न पिछले श्लोक में, और कुछ प्रश्न है। अन्यों को दंड देने की विधि क्या है? दंड के वास्तविक पात्र कौन है? क्या सकाम कर्मों में लगे सारे कर्मी दंडनीय है, या उनमें से केवल कुछ ही दंडनीय होते हैं? इनके हमें जवाब चाहिए। अब जवाब तो जरूर है उनके पास। यमराज के सचमुच वे दूत तो थे ही, काफी सारा ट्रेनिंग भी दिया था, स्पेशल क्रैश कोर्सेस वगैरह उनको असाइनमेंट के लिए भेजने के पहले। आज उनसे कुछ गलती जरूर हो रही है, वो कौन सी गलती है भी स्पष्ट होगा। नारायण का नाम जो लिया तो उनको वहां से वहां आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन आ पहुंचे हैं। तो विष्णु दूतों का हक इस अजामिल पर है ऐसे, और यमदूतों का नहीं। तो भी ये यमदूत अपने जवाब, जो प्रश्न पूछे उनके मुंह तोड़ जवाब जरूर देंगे। वो क्या जवाब है ये कल के सत्र का विषय रहेगा। इस अध्याय को लगभग दो तिहाई अभी तक समाप्त हुआ है, 1/3 जो बचा हुआ, एक तिहाई हिस्सा